بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے بی اے بی ایس سی بی کام جدید نصاب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 65 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7. جس کے تحت مرکزی قوانین میں یکسانیت پیدا کرنے کی غرض سے صوبوں کے لیے قانون بنانے کا اختیار تھا. نمبر 2, اس کا ڈھانچہ صدارتی تھا. نمبر 3, صدر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھا. نمبر 4, کابینہ کے تمام ارکان کے لیے لازم تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوں. نمبر 5, آئین میں یہ دفعہ بھی شامل کی گئی کہ کوئی وزیر جو اسمبلی کا رکن نہ ہو ایک سال تک وزیر رہ سکتا تھا. نمبر 6, عبوری آئین میں وہ تمام بنیادی حقوق شامل تھے جو 1965 کے آئین میں موجود تھے. نمبر 7, عبوری آئین کے تحت اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے اور علاقائی یا قومیتی زبانوں کو ان کے جائز حقوق کی ہی بنیاد پر تسلیم کر لیا گیا. نمبر 8, عبوری آئین میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ ترمیم کی گئی کہ صنف کی بنیاد پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. البتہ آئین میں یہ حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خاص عہدوں اور ملازمتوں میں مردوں اور عورتوں کا خاص کوٹا مقرر کر سکتی ہیں. نمبر 9, وابڈا اور صنعتی ترقیاتی کارپوریشن بدستور مرکز کے پاس رہنے دیے گئے. نمبر 10, قومی اسمبلی نے 17 اپریل 1972 کو عبوری آئین کی منظوری دی. نئے آئین کی تیاری. 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے مستقبل کے نئے آئین کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے 25 رکنی کمیٹی مقرر کی گئی. 1 اگست 1972 کو حزب مخالف نمائندوں نے صدر بھٹو سے ملاقات کی اور آئینی مسودہ کو منظور کرنے پر سمجھوتا طے پایا. اس سمجھوتے کی روشنی میں آئینی مسودہ 2 فروری 1973 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا جو معمولی ترامیم اور رد بدل کے ساتھ 10 اپریل 1973 کو منظور کر لیا گیا. 12 اپریل کو صدر پاکستان کے توثیقی دستخط سے 14 اگست 1973 سے نیا آئین نافذ العمل قرار پایا. 1973 کے آئین کی خصوصیات. ہر ریاست کا آئین کچھ منفرد اور امتیازی خصوصیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. پاکستان کے نئے مستقل آئین کی اہم خصوصیات کا اجمالی جائزہ درج ذیل عنوانات سے پیش کیا جاتا ہے. نمبر 1, تحریری آئین. 1973 کا آئین تحریری آئین ہے. یہ آئین 280 دفعات اور اچھے گوشواروں پر مشتمل ہے. نمبر 2, نیم استوار آئین. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ آئین نیم استوار ہے. یہ نہ تو اس قدر استوار یعنی غیر لچکدار ہے جیسے برطانوی آئین. اس کی صورت لچکدار اور غیر لچکدار کے بین بین ہے. نمبر 3, وفاقی نظام. 1973 کا آئین بھی پہلے دونوں آئینوں کی طرح وفاقی نوعیت کا ہے. پاکستانی وفاقی 4 صوبائی اکائیوں پر مشتمل ہے. صوبوں کو اختیارات مرکز کے برعکس آئین سے دیے گئے. تاہم مرکز کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے اہم قسم کے اختیارات حاصل ہیں. نمبر 4, اسلامی دستور. 1973 کے آئین میں سابقہ دساتیر کی طرح ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. یہ آئین وفاقی اور پارلیمانی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی بھی ہے. پہلی دفعہ اس آئین میں گزشتہ دساتیر کے برعکس اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت دی گئی. سابقہ دونوں دساتیر میں صرف سربراہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا. اس کے برعکس موجودہ دستور میں ملکی سربراہ کے علاوہ وزیر اعظم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو. صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے حلف کی عبارت بھی دستور میں ضبط تحریر میں لائی گئی. نمبر 5, پارلیمانی طرز حکومت. 1973 کا آئین جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی حکومت کا حامل ہے. امید کی جاتی ہے کہ اب یہ نظام بفضل خدا ملک کے لیے مفید اور سود مند رہے گا کیونکہ اب ملک کے حالات پہلے سے اکثر مختلف ہیں اور جمہوری ادارے ملک میں روبہ عمل ہیں. نمبر 6, दो ऐवानी मुकन्नाना 1977 के दस्तूर में दो ऐवानी मुकन्नाना को अपनाया गया, जबकि पाकिस्तान के साबका कसातीर यक ऐवानी के शामिल थे। मौजूदा पार्लियामेंट दो ऐवानों यानी ऐवान बाला सेनेट और ऐवान जेरी कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। नंबर 7, आजाद अदलिया। 1973 के आईन के तहत मुल्क में शहरी आजादियों और अदल इंसाफ के सस्ते हुसूल के लिए बाख्तियार अदलिया का वजूद कायम किया गया है। अवामी हुकूक की पामाली की सूरत में आजाद अदलिया ही हुकूक को तहफ्फुज़ फराहम करती है। अदलिया ने मुल्क में शुरू ही से अहम किरदार अदा किया है और कौमी तवक्कात पर हमेशा पूरा उतरने की कोशिश की है। नंबर 8, कानून की बालादस्ती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के अहम तकाजों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई है। मुल्क में सिर्फ एक ही कानून और एक ही किस्म की अदालतों का वजूद पाया जाता है। कानून शिकनी की सूरत में ख्वाह कोई फर्म ख्वाह कोई सरकारी मुलाजिम हो या आम आदमी, उसे एक ही अदालत में पेश किया जाता है। कानून को हाथ में लेने वाले अफराद को सख्त सजा दी जाती है। कानून की बालादस्ती जमहूरियत का खासा है। नंबर 9, बराह रास्त इंतखाब। 1973 के आइन की रूह से सूबाई और कौमी असम्बली के लिए बराह रास्त बिला वास्ता तर्ज इंतखाब को अपनाया गया। नंबर 10, कौमी जबान। 1973 के आइन में उर्दू को कौमी जबान करार दिया गया। नंबर 11, इस्तेहसाल का खात्मा। मौजूदा आइन की रूह से पाकिस्तान में कोई फर्द या गिरोह किसी शहरी का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा। अवाम को तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। सरमायादारी निज़ाम का किला कमा किया जाएगा। मसावात मोहम्मदी का मुल्क में दौर दौरा होगा। इस्तेसाली क़ुव्वतों को मुल्क में पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। गिरा फरोशी स्मगलिंग ब्लैक मार्केटिंग का मुल्क से खात्मा किया जाएगा। नंबर 12, अकलियतों का तहफ्फुज़। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन की रूह से सियासी और मजहबी अकलियतों को हर कस्म का तहफ्फुज़ हासिल होगा। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। नंबर 13, रियासत से वफादारी और आईन की पाबंदी। आईन में मुल्क से वफादारी का अंसर वाज़े तौर पर मौजूद है। मुल्क दुश्मन अनासिर और तकरीब कारों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी तरक्की और मुल्क की बहबूद के लिए आईन की पासदारी और मुल्क की वफादारी हर शहरी पर लाजिम है। 1973 के आईन की इस्लामी दफात। नंबर 1, खुदा की हाकमियत। पाकिस्तान के साबका दसातीर की तरह 1973 के दस्तूर का आगाज एक इब्तदाइया से होता है जो करारदाद मकासद की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। इससे खुदाए बुजुर्गो बरतर की हाकमियत को इन अल्फाज में तस्लीम किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम कायनात पर सिर्फ अल्लाह ताला को हाकमियत और इकतदार हासिल है। नंबर 2, मुमलिकत का नाम। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, इसलिए आईन में इसकी इस्लामी नौयत को जाहिर करने के लिए मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाए। नंबर 3, सरकारी मजहब। इस दस्तूर में ये बात पूरी तरह वजाहत के साथ कही गई कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। पहले आईन इस बारे में खामोश थे। नंबर 4, सदर और वजीर आजम का मुसलमान होना। 1973 के आइन में असल मतन में सदर पाकिस्तान और वजीर आजम दोनों का मुसलमान होने की शर्त आयद की गई है। नंबर 5, इस्लामी कवानीन की तदवीन। आइन में इस बात का इजहार किया गया है कि तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक ढाल लिया जाएगा और आइंदा ऐसा मुसव्विदा कानून पास नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो। ताहम गैर मुस्लिम अकलियतों पर इनके शख्सी कवानीन का नफाज होगा और बतौर शहरी इनको मौके फराहम किए जाएंगे कि वो अपने मजहब पर आजादाना अमल कर सकें और अपनी सकाफत को फरोग दे सकें। नंबर 6, इत्तेहादे आलम इस्लाम। इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम आलम इस्लाम का एक हिस्सा है, इसलिए दस्तूर में वजाहत की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद पर तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ बिरादराना ताल्लुकात को बढ़ाने और मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। नंबर 7, नजरिया पाकिस्तान पर यकीन। इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यही वजह है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट के अरकान अपने ओहदों का हलफ उठाते हुए इस्लामी नज़रिए को पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद तस्लीम करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि वो नज़रिया इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है मुकम्मल जद्दोजहद करेंगे। नंबर 8, इस्लामी नज़रियाती कौंसल। दस्तूर में कहा गया है कि इसके निफाज के 90 दिन के अंदर अंदर एक कौंसल तश्कील दी जाएगी जिसको कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम से पुकारा जाएगा। इसका काम इस्लामी नज़रिया हयात के फरोग और इस्लाम के मुताबिक कानून साजी के उसूलों को तरतीब देने की सिफारिश करना होगा। नंबर 9, सदर और वजीर आजम का इंतखाब। नए आइन की तदवीन के बाद 10 अगस्त 1973 को सदारती इंतखाबात हुए। इसमें हुकूमती उम्मीदवार चौधरी फजल इलाही सदर मुंतखब हुए। इसी तरह वजीर आजम के ओहदे के लिए हुकूमती उम्मीदवार जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम मुंतखब हुए। सदर और वजीर आजम ने 14 अगस्त 1973 को अपने अपने ओहदों का हलफ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार सेनेट के इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में हुए। मिस्टर हबीबुल्ला चेयरमैन और मिर्जा मोहम्मद ताहिर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। नंबर 10, बांग्लादेश को तस्लीम करने का मसला। 4 जुलाई को वजीर आजम ने बांग्लादेश को तस्लीम करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की। मुतफिका फैसले से 9 जुलाई 1973 को कौमी असम्बली ने बांग्लादेश को तस्लीम करने की करारदाद मंजूर की। नंबर 11, फौजों की वापसी का मसला। 1971 की जंग में 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत की कैद में चले गए। उनकी वापसी का मसला बड़ा अहम था। आखिरकार वो मसला भी हल किया गया और तमाम जंगी कैदियों को वापस लाया गया। भुट्टो हुकूमत की इस्लाहात। नंबर 1, ज़रई इस्लाहात। 1 मार्च 1972 को ज़रई इस्लाहात का निफाज अमल में लाया गया जिसके तहत ज़मीन की इनफरादी मिल्कियत की हद 150 एकड़ नहरी इलाके और 300 एकड़ बारानी कर दी गई। अब किसी आदमी को 15,000 पैदावारी इंडेक्स यूनिट से ज़्यादा रखने की इजाज़त न होगी। तमाम जायद ज़मीन मालिकों से लेकर मज़ारों और बेज़मीन काश्तकारों में बिना मुआवजा तकसीम कर दी जाएगी। मालिकों को जब्त शुदा जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इलावा अजीज सरकारी जमीन आइंदा नीलाम नहीं होगी। नंबर 2, लेबर इस्लाहात। 23 अगस्त 1972 को वफाकी वजीर मोहम्मद हनीफ ने लेबर इस्लाहात का ऐलान किया। इसी ऐलान के तहत मजदूरों को उनके बुनियादी हकूक की जमानत दी गई। यूनियन साजी और इज्तमाही ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन और बच्चों के लिए मुफ्त तालीम जैसी सहूलतों का हकदार ठहराया गया। नंबर 3, सनती इस्लाहात। हुकूमत ने मुख्तलिफ तवारीख में 31 बुनियादी सनतों को फौरी तौर पर अपनी तहवील में ले लिया। इनमें फौलाद, बुनियादी धातों की सनत, सीमेंट, अवामी भलाई की सनतें, बिजली की पैदावार और तकसीम, गैस और तेल साफ करने की सनतें शामिल हैं। 15 सनती इदारों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। नंबर 4, इकतसादी इस्लाहात। जनवरी 1972 में इकतसादी इस्लाहात का हुक्म जारी किया गया जिसके तहत 20 बड़े सनतों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग एजेंसियां बर्खास्त कर दी गईं। नंबर 5, बैंक इस्लाहात। बैंक इस्लाहात के जरिए तमाम तजारती बैंकों को कौमी तहवील में ले लिया गया। नंबर 6, बीमा कौमी तहवील में। सदारती हुकुम मजरिया 19 मार्च 1972 के जरिए बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में ले लिया गया और नवंबर 1972 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कायम कर दी गई। नंबर 7, शिनाख्ती कार्ड का इजरा। 1 जुलाई 1973 को शिनाख्ती कार्डों की स्कीम का इजरा हुआ। इसका मकसद पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त था। नंबर 8, पुलिस इस्लाहात। 12 अप्रैल 1972 को पुलिस इस्लाहात का ऐलान हुआ ताकि पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। नंबर 9, अहमदियों को अकलियत करार देने का फैसला। भुट्टो हुकूमत ने शानदार कारनामा जो कि उन्होंने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया। नंबर 10, जहेज का कानून। 1976 में मुल्क में जहेज की लानत को खत्म करने के लिए वजारत मजहबी उमूर ने जहेज और तहाइफ पर पाबंदी का कानून पेश किया, जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। भुट्टो हुकूमत के जवाल के असबाब। नंबर एक, जबरो तशद्दुद के नए नए अंदाज। भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक नई फोर्स तश्कील की, जिसका काम हुकूमत के इशारों पर दुश्मनों को ठिकाने लगाना था। इस फोर्स ने बहुत से लोगों को कत्ल किया और मासूम लोगों पर तशद्दुद किया। नंबर दो, इंतखाबी धांधली। 1977 के आम इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली की गई। सरकारी मशीनरी को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया, मुखालिफ पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया और सरकारी खजाने को बेदरेग इस्तेमाल किया गया। नंबर तीन, तलबा के साथ वहशियाना सलूक। भुट्टो को इकतदार में लाने के लिए तलबा ने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन भुट्टो हुकूमत ने तलबा के जलसे जुलूसों पर पाबंदियां लगा दी। तलबा के घरों पर छापे मार कर उनके साथ वहशियाना सलूक किया गया। तालीमी इदारों पर पुलिस का पहरा लगाया गया। तलबा से उनकी आज़ादी छीन ली गई। नंबर चार, मुआशी बहरान। भुट्टो हुकूमत ने आवाम से मुआशी बदहाली से निजात का जो वादा किया था, वो वादा पूरा न कर सकी। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ता गया, जिससे कौमी खजाना खाली हो गया और मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हो गया। इसके अलावा कई वजूहात थी जो भुट्टो हुकूमत के जवाल का सबब बनी। जनरल जियाउल हक का दौरे हुकूमत। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने तमाम मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर मुल्क की बागडोर संभाल दी। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। अहम कौमी उमूर की बजावरी के लिए सदर फजल इलाही की मदद के लिए 4 रुकनी काउंसिल बना दी गई। चारों सूबों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गवर्नर बना दिया गया। आइन की तनसीख के बजाय इसकी चंद दफात पर अमल दरामद रोक दिया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई। मार्शल लॉ नाफिज करते ही जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरे कई लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 29 जुलाई 1977 को तमाम नजरबंदों को रिहा कर दिया गया। जनरल जियाउल हक बतौर सदर पाकिस्तान। 14 अगस्त 1978 को जनरल जियाउल हक ने सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने ये अहदा चौधरी फजल इलाही की मुद्दत सदारत पूरी होने के बाद संभाला। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान और सियासतदानों का एहतसाब। मुल्क में आम इंतखाबात कराने के लिए 17 नवंबर 1979 की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इलेक्शन के करीब 1 अक्टूबर को इंतखाबात को मुलतवी करके सियासतदानों के एहतसाब का अमल शुरू करने का ऐलान किया गया। एहतसाब के लिए 31 एहतसाब ट्रिब्यूनल बनाए गए। सियासतदानों के असासों के गोशवारों की छानबीन की और बदउनवान सियासतदानों को ना अहल करार देने की सजाएं दी। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। 25 सितंबर 1979 को पाकिस्तान में पहली बार बालिग हक राय दही की बिना पर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद करवाए गए। आम इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का मंसूबा। 12 अगस्त 1983 को सदर पाकिस्तान ने मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात कराने की मंसूबे का ऐलान किया। इस सिलसिले में 25 फरवरी 1985 को कौमी असम्बली और 28 फरवरी 1985 को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए। वजीर आजम का तकर्रुर। गैर जमाती बुनियादों पर कायम होने वाली असम्बली ने मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम चुना। उन्होंने 23 मार्च 1985 को अपने ओहदे का हलफ उठाया। निफाज इस्लाम के लिए जिया हुकूमत की कोशिशें। 1977 में कायम होने वाली फौजी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम की हुकूमत की तरफ खसूसी तवज्जो दी। ज़ेल में इस सिलसिले में अहम इकदाम का जायजा लिया जाता है। नंबर एक, निज़ाम ज़कात। 1980 में पहली बार सरकारी तौर पर ज़कात का निज़ाम राइज किया गया, जिसकी रूह से हर साल यकुम रमजान को हर मुसलमान के सेविंग अकाउंट में जमा शुदा रकम सरमायाकारी और असासों पर इस्लामी शरह के मुताबिक 2.5% सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाती है। अगर किसी फिरके के मुताबिक हुकूमत को ज़कात देना जायज़ नहीं है, तो उसे ज़कात के मस्कूरा तरीक़ेकार से छूट मिल सकती है। ज़कात की रकम गुरबा और मसाकीन की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस गर्ज के लिए ज़कात कमेटियां कायम की गईं। नंबर दो, उश्र। जरूरी पैदावार पर उश्र नाफिस किया गया जो कि पैदावार का 10वां हिस्सा होता है। इस तरह हासिल शुदा आमदनी से रफाही इदारों और मुस्तहक अफराद को माली इमदाद फराहम की जाती है। नंबर 3, निज़ाम अदल को इस्लामी तकाजों के मुताबिक ढालने के लिए 1989 में सूबाई हाई कोर्ट में शरीयत बेंच कायम किए गए। बाद में इन बेंचों की जगह एक वफाकी शरई अदालत कायम की गई जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। यह अदालत इस्लामी तालीमात के मुनाफी कवानीन और इंतजामी इकदामात को गैर मौसर और गैर कानूनी करार दे सकती है। इसके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के शरई बेंच में अपील की जा सकती है। वफाकी शरई अदालत में कानून दान उलमा हजरात को जज मुकर्रर किया गया। नंबर 4, इस्लामी ताजीरात। मुख्तलिफ जराइम मसलन चोरी, शराब नोशी, जनाकारी वगैरह के लिए इस्लामी सजाएं नाफिज की गई। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि अदालती निज़ाम की निचली सतह पर काजी अदालतें कायम की जाएं ताकि अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ मिल सके। नंबर 5, निज़ाम बैंककारी। हुकूमत ने एक मरहलावार प्रोग्राम के तहत बैंककारी के निज़ाम को सूद की लानत से पाक करने के लिए इकदाम किए। यकुम जनवरी 1981 से बैंकों में नफा और नुकसान की बुनियाद पर अकाउंट खोलने का आगाज किया गया। नंबर 6, निज़ाम सलात। नमाज कायम करने के लिए इस्लामी तालीमात नहायत वाजे हैं, इसलिए हुकूमत ने नेक और सवाले लोगों को अदाकाराना हैसियत में नाजमीन सलात मुकर्रर किया ताकि लोग अपने अपने इलाकों में नमाज पंजगाना का अहतमाम कर सकें। नंबर 7, इस्लामी शियार। माशरे में इस्लामी शियार और कदरों को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने खसूसी अहतमाम किया और यानी और दीगर बुराइयों के रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए गए। चादर और चारदीवारी के तहफ़ का वादा किया गया। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और अखबार को हिदायत की गई कि इस्लामी रुझान और कदरों की अशात करें। रेडियो, टेलीविजन पर अजान, तिलावत कुरान पाक, अरबी तदरीस, नीज, इस्लामी और अखलाकी प्रोग्रामों का सिलसिला बाकायदगी से शुरू किया गया। दफ्तरों में नमाज बाजमात और माह रमजान में हुस्न क़िरत के मुकाबलों में शबीना महफिलों का सरकारी तौर पर अहतमाम किया गया। नंबर 8, तालीमी पॉलिसी। 1989 में इंटरमीडिएट और डिग्री क्लासों में इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान लाजमी मजामीन के तौर पर शामिल किया गया। इसी तरह स्कूलों में कुरान मजीद की तदरीस का बेहतर निज़ाम किया गया। नंबर 9, इस्लामी यूनिवर्सिटी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात की तालीम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद में नई यूनिवर्सिटी कायम की गई जो कि इस्लामी उलूम की तालीम और तहकीक पर खसूसी तवज्जो दे रही है। नंबर 10, इस्लामी नजरियाती कौंसल। इस्लामी नजरियाती कौंसल में तश्कील नौ की गई ताकि तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को नुमाइंदगी दी जा सके। ये कौंसिल मुरव्वजा कवानीन का जायजा लेकर इन कवानीन और इस्लामी उसूलों में कोई तजाद हो तो उसे फौरन रफा करेगी। इसके अरकान की तादाद 20 है। जनरल जियाउल हक का आईन में तरामीम का ऐलान। 8वीं तरमीम। सदर पाकिस्तान ने सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के अख्तियार में तवाजुन कायम करने के लिए 12 मार्च 1985 को आईनी तरामीम का बाजाबता ऐलान किया। सदर ने जिस हुकुम के जरिए जिन तरामीम का ऐलान किया उसे 1973 के आईन की बहाली का हुक्म 1985 का नाम दिया गया। आईन के हिस्सा सोम के बाब नंबर 1 में सदर पाकिस्तान के इख्तियार का जिक्र है। इन दफात में चंद एक तरामीम की गई जो कि दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, सदर पाकिस्तान अपने फ़राइज़ की अंजामदही में काबीना वजीर आजम या मुतल्लिका वजीर की राय पर अमल करेगा। नंबर 2, उसको इख्तियार होगा कि जब कोई बिल उसे इरसाल किया जाए तो वो 45 दिनों के अंदर या तो उसकी तौसीख करें या फिर नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस कर दें, और अगर पार्लियामेंट तो दूसरी बार गौर के बाद वही बिल सदर को वापस इरसाल कर दे तो उसकी तौसीख करना उसके लिए लाजमी होगी और सदर के दस्तखतों के बाद कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाएगा। नंबर 3, सदर का वजीर आजम से मशवरा लेना और वो इस मशवरे पर अमल करने का पाबंद था, मगर तरमीम के बाद सदर अपने आईनी इख्तियार के इस्तेमाल में आज़ाद हो गए और वजीर आजम के मशवरे के पाबंद भी नहीं रहे। अगर सदर अज खुद असम्बली तोड़ दे तो 90 दिनों में आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेगा। 4 सदर पाकिस्तान को अज खुद या वजीर आजम की राय पर किसी अहम फैसले पर रेफरेंडम का इनेकाद करने का इख्तियार हासिल होगा। इसके लिए कानून नई कौमी असम्बली बनाएगी। 5 सदर पाकिस्तान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराह मुकर्रर करेंगे और इसी तरह मुशीरों को भी वजीर आजम की राय पर मुकर्रर करेंगे। आर्टिकल 243 में एक ज़ेली दफा का इजाफा किया गया जिसकी रूह से सदर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होंगे। 6 सदर को कुछ इख्तियार इजाफे भी दिए गए जिनमें वजीर आजम के तकरीरी भी शामिल है। 7 इस तरमीम के बाद सदर को अपने सवाबदीद पर असम्बली तोड़ने का हक दिया गया जो पहले कभी ना था क्योंकि 1973 के आइन में सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की मंजूरी की सूरत में किसी और असम्बली के रुकन को अक्सरियत का एतमाद ना होने की सूरत में सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार हासिल था। 8 इसके मुताबिक वोटर की उम्र 18 साल मुकर्रर थी जो तरमीम के बाद 21 साल तक बढ़ा दी गई। अकलियतों के लिए 10 नशिस्तें मखसूस कर दी गईं। इनका इंतखाब जुदागाना बराह रास्त होगा। 9 इसके जरिए सदर पार्लियामेंट को कौमी असम्बली को किसी भी बिल के इस बारे में पैगाम भी भेज सकता है और इंतखाब के बाद असम्बली के पहले और आखिरी इजलास से सदर को खिताब करने का मौका मिला। आइन के तीसरे हिस्से का दूसरा बाब पार्लियामेंट से मुतालिक है, इसमें भी तरमीम की गई। 1 सेनेट के अरकान की तादाद 63 से बढ़ाकर 87 कर दी गई यानी हर सूबे से 14-14 अरकान की जगह अब 19-19 अरकान चुने जाएंगे जिनमें से 5 अरकान मुमताज उलमाए किराम पेशावर हजरात और माहिरीन होंगे। इसके अलावा 8 कबाइली इलाकों से और 3 वफाकी सदर मकाम से चुने जाएंगे। 2 सेनेट का अरसा 4 साल के बजाय अब 6 साल होगा और इसके 1/3 अरकान हर 2 साल बाद सुबुकदोश हो जाएंगे और उनकी जगह नए सेनेटर मुंतखब होंगे। इसके अलावा वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक 20% अरकान की तायद से बजट सेशन के अलावा असम्बली के किसी इजलास में भी पेश की जा सकेगी। आइन का चौथा हिस्सा गवर्नरों और सूबाई असम्बलियों के मुतालिक है। इसमें ये तरमीम की गई कि सूबे में गवर्नर को वही इख्तियार हासिल होंगे जो वफाकी सतह पर सदर को हासिल होंगे। गोया गवर्नर सूबाई असम्बली का एतमाद रखने वाले रुकन को ही सदर पाकिस्तान के मशवरे पर सूबे का वजीर आला मुकर्रर करेगा। आइन के 5वें हिस्से में वफाकी और सूबों के ताल्लुकात से मुतालिक उमूर में इसमें सूबाई असम्बलियों के अख्तियार में इजाफा किया गया यानी वाइंदा सदर के इंतखाब हल्का इंतखाब में शामिल कर दी गई हैं। और दीगर ये कि आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 2/3 की अक्सरियत के अलावा सूबाई असम्बलियों की हिमायत लाजमी करार दे दी गई है। आइन के 6वें हिस्से में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसमें मालियात जायदाद मामलात और मुकदमात से मुतालिका उमूर शामिल हैं। आइन के 7वें हिस्से में जिन का वास्ता अदलिया से है उनमें सिर्फ इतना इजाफा किया गया कि मार्शल लॉ के साथ 8 सालों में अदलिया से मुतालिका जो कवानीन तश्कील दिए गए उन्हें आइन में शामिल किया गया। आइन के वकार को तहफुज देने और उसे ऊंचा मकाम देने के लिए तौहीन अदालत से मुतालिक दफा 104 में तरमीम कर दी गई। आइन के 8वें और 9वें हिस्से में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। आइन के 10वें हिस्से में एक आर्टिकल यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क्याम का इजाफा ही किया गया। जुनेजो हुकूमत की बरतरफी और आम इंतखाबात का ऐलान 29 मई 1988 को जनरल जिया जो जुनेजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया और मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जियाउल हक की वफात आम इंतखाबात से पहले सदर पाकिस्तान 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक हवाई हादसे का शिकार हो गए। उनको फैसल मस्जिद के सब्जादार में दफन किया गया। जुनेजो दौरे हुकूमत 1985 के इंतखाबात में बनने वाली असम्बली ने मोहम्मद खान जुनेजो को बतौर वजीर आजम मुंतखब किया। उन्होंने 23 मार्च 1985 को अपने ओहदे का हलफ उठाया। जुनेजो हुकूमत ने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए कई मंसूबों पर तेजी से काम का आगाज किया जिसमें मुल्क में सियासी निजाम का क्याम बेरोजगारी का खात्मा नाख्वानदगी दूर करना बदउनवानी रिश्वत नाइंसाफी खत्म करना इंसाफ की फराहमी मुल्क की वकार की सालमियत का इस्तेहकाम वगैरह शामिल हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक देने का ऐलान भी किया। जुनेजो हुकूमत की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक 4 रुकनी टास्क फोर्स भी कायम की, जिसका मकसद देहात में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। ज़रात की तरक्की के लिए भी मंसूबे बनाए गए, जो हुकूमत जो कि 1985 के गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के बाद वजूद में आई थी, आखिरकार 29 मई 1988 को खत्म कर दी गई। बेनजीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत 29 मई 1988 को जुनेजो हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल जियाउल हक ने मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया, लेकिन इंतखाबात से पहले 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक का इंतकाल हो गया तो सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान ने कायम मुकाम सदर का हलफ उठाया। उन्होंने इंतखाबात को वक्त मुकर्रर पर कराने का ऐलान किया। इंतखाबात 18 अक्टूबर 1988 को मुनक्किद हुए। 1988 के इंतखाबात क्योंकि जमाती बुनियादों पर हुए थे, लिहाजा इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने मजमूई तौर पर 92 नशस्तें हासिल की, जबकि उनके मुकाबले में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 55 नशस्तें हासिल की। इंतखाबात के नतायज को सामने रखते हुए सदर इसहाक खान ने अक्सरियती पार्टी की रहनुमा बेनजीर भुट्टो को वजारत तश्कील देने की दावत दी। ये पेज नंबर 76 है, पार्ट नंबर 7 यहाँ मुकम्मल होता है।